الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو ابھی آیات چل رہی ہیں آج کل وہ آیت نمبر 77 سے لے کر کے 82 تک ہے. تو ان کے ہم معارف و مسائل پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے، اور آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، جب وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ وہ عزیز کو یعنی یوسف علیہ السلام کو کنونس کر کے وہ ان کو واپس لے جا سکے بنیامین کو، تو اس کے بعد پھر ان میں سے جو جو بڑے تھے، قال کبیرہم، جو ان میں سے کبیر تھے، انہوں نے انہوں سے کہا کہ بھائی میں تو یہاں سے نہیں ٹلتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو ادھر سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ یا تو میرے والد مجھے بلا لیں یا پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے، تو تم لوگ جاؤ واپس، ٹھیک ہے، ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ. باپ تو ان کے بھی تھے، لیکن جب اس طریقے کی ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے نا تو پھر تم کے اوپر بات آ جاتی ہے، تمہارے باپ، تمہارا خدا، تمہارا سب کچھ، تمہارا. یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو یہیں رہوں گا، آپ سب لوگ اپنے والد کے پاس واپس جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چشمدید حالات ہیں کہ مال مسروقہ ان کے سامان میں سے ہمارے سامنے برآمد ہوا ہے. پیج نمبر 124 کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں معرفت قرآن نمبر 5 سے. اس کے آگے پھر چلتے ہیں، فرمایا کہ وما کنا للغیب حافظین، اور یہ بھی ان کو بتا دینا کہ ہم غیب کے اوپر محافظ نہیں ہیں، یعنی ہم نے غیب کا احاطہ نہیں کیا ہوا کہ کیا ہوگا، کیا ہمارے پیچھے ہو رہا ہے وغیرہ. یعنی ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، یہ عہد ظاہری حالات کے اعتبار سے تھا، ٹھیک ہے، غیب کا حال تو ہم نہ جانتے تھے کہ ہم چوری کر کے گرفتار، کہ یہ چوری کر کے گرفتار اور ہم مجبور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ نہیں تھا. اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کی کہ کوئی ایسا کام ان سے نہ ہو جائے جس کے باعث وہ تکلیف میں پڑے، مگر ہماری یہ کوشش ظاہری احوال ہی کی حد تک ہو سکتی تھی، ہماری نظروں سے غائب، لا علمی میں ان سے یہ کام ہو جائے گا، ہم کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو وعدے جو ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے کر لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا وہ ہم بڑی جلد بازی میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ کال دے بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی کیا ہمارے پاس کچھ ایسا، یعنی ایسے کوئی سرکمسٹانسز ہیں، ایسے کوئی حالات ہیں کہ ہم اس کال کے اوپر پورے بھی اتر سکیں گے کہ نہیں پورے اتر سکیں گے، ٹھیک ہے. بہرحال ان کے سامنے تو ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ چونکہ غلہ چاہیے تھا اور جو عزیز تھا اس نے شرط لگا دی تھی، حتیٰ کہ دھمکی تک دے دی تھی کہ اگر بھائی کو نہیں لائے نا تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے، مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے، اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، اور اگر لاؤ گے تو میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا. تو یہ تو یعنی ہر لحاظ سے بیسیکلی ٹریپ ہو چکے تھے، تو ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ والد صاحب سے جو ہے نا وہ وعدہ کر لیں، اور والد صاحب جو ہے وہ آسانی سے تو بھیج بھی نہیں رہے تھے بنیامین کو، تو وعدہ کرنا ہی پڑا ان کو، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں ان کا کوئی قصور بظاہر تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا وعدہ کیوں کیا، لیکن ہم اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے بات خالی ریمائنڈ کروا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی وعدہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ وعدہ پورا بھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. आगे कहते हैं कि चूंकि बरादरान यूसुफ इससे पहले एक फरेब अपने वालिद को दे चुके थे और ये जानते थे कि हमारे मजकूर उस सदर बयान से वालिद का हरगिज इत्मीनान नहीं होगा, ठीक है ना, यानी लर्किंग इन द बैक ऑफ देयर माइंड, है ना, गिल्टी कॉन्शियस जो था ना, वो इनको था कि हमने पहले भी वालिद साहब के साथ जो है ना उस किस्म की धोखे फरेब वाला मामला किया हुआ है, तो गिल्टी कॉन्शियंस इज इट्स ओन एक्यूजर, ठीक है, वो खुद ही जो है ना वो इंसान को नफ्से लवामा अगर हो तब तो गिल्टी कॉन्शियंस जो होता है यानी एहसास से जुर्म जो है ना वो इंसान को मलामत करता है, अगर नफ्से मुतमइन्ना अगर नफ्से लवामा हो ना तो कुछ नहीं होता, फिर कोई गिल्टी कॉन्शियंस नहीं होता, फिर कोई जो है ना वो एहसास नहीं होता, बल्कि इंसान धड़ल्ले के साथ गलत काम भी करता है और उसको जस्टिफाई भी करता है, ठीक है, और उसको जो है ना वो कोई नदामत वगैरह और कोई इस किस्म का मसला नहीं, तो इनके जो हालात बज़ाहिर ऐसे ही लगते हैं कि ये नफ्से लवामा के स्टेट के अंदर थे, तो बेहतर स्टेट है जाहिर है ये, या नफ्से लवामा की भी शायद इब्तदाई दर्जे के किसी मुकाम पर हों, बहरहाल इनको गिल्टी कॉन्शियंस था कि हमारे मजकूर उस सदा बयान से वालिद का हरगज हरगज इत्मीनान नहीं होगा और वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मजीद ताकीद के लिए कहा कि आपको हमारा यकीन ना आए तो आप इस शहर के लोगों से तहकीक कर लें जिसमें हम थे, यानी शहर मिस्र, ठीक है ना, उस शहर के लोगों से तहकीक कर लें जिसमें हम थे यानी शहर मिस्र, और आप इस काफिले से भी तहकीक कर सकते हैं जो हमारे साथ ही मिस्र से कनान आया है, और हम इस बात में बिल्कुल सच्चे हैं, ठीक है, तो जब गिल्टी कॉन्शियंस होता है और ये भी होता है कि भाई चूंकि आप गड़बड़ कर चुके हैं तो अब अगले बंदे को जो है ना वो आपके ऊपर एतमाद नहीं होगा, तो फिर जो है ना वो इंसान ज्यादा दलाइल और ज्यादा जो है ना वो अपने अपने सपोर्टिव एविडेंसेस जो है ना वो अगर उसके पास हो तो फिर वो कोशिश करता है कि सारे एविडेंस जो है ना वो सामने पेश कर दे, ठीक है, तो अब इनके पास तो सपोर्टिव एविडेंस थे, लोग थे जिन्होंने इन सारे हालात को देखा हुआ था, तो इन्होंने सब कुछ जो है ना ये उनसे भी पूछ लें, उनसे भी पूछ लें, आप अपनी तसल्ली कर लें, हम जो है वो बेकसूर हैं और ये, ठीक है, लेकिन जिसका कोई ऐसा मामला ना हो बल्कि वो सच ही बोलता हो और वो पहले लोगों को धोखा ना देता रहा हो तो वो फिर इतना परेशान नहीं होता लोगों को जो है ना वो एविडेंसेस प्रोवाइड करने के, हाँ ठीक है एविडेंस की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पेश कर दूंगा, या जो है वो अल्लाह ताला मेरा मेरा एविडेंस है, अल्लाह ताला मेरा गवाह है और मैं अपनी बात में सच्चा हूँ, तो इसको इतनी परवाह नहीं होती फिर सच्चे इंसान को। तफसीर मज़हरी में इस जगह इस सवाल का इआदा किया गया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वालिद के साथ इस कदर बेरहमी का मामला कैसे गवारा कर लिया, ठीक है, तो ये पीछे भी हम काफी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि खुद अपने हालात से भी इत्तला नहीं दी, फिर छोटे भाई को भी रोक लिया जबकि बार बार ये भाई मिस्र आते रहे, ना उनको अपना राज बताया ना वालिद के पास इत्तला भेजी, इन सब बातों का जवाब तफसीर मज़हरी ने यही दिया है कि इन्नहु अमिला ज़ालिका बि अम्रि अल्लाह तआला लियज़ीद फी बलाइयाहु, ठीक है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सारे काम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किए जिनका मंशा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान और इब्तिला की तकमील थी, ठीक है, तो अपने ख्वाहिश या कोई ऐसे इनके कोई अल्टीरियर मोटिव वगैरह कोई नहीं थे, बल्कि उनको हुक्म दिया जा रहा था कि भाई ऐसे ही करो ऐसे ही करो ऐसे ही करो, और जब अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त हुक्म आ गया तो उसके बाद जो है ना वो वही लॉ होती है, वही अल्लाह ताला का हुक्म ही जो है ना वही हिकमत होती है, वही कानून होता है, वही लॉ होती है, और चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी थे, ठीक है, तो इस वजह से इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि यही हिकमत थी कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है ना वो आजमाइश में मुब्तला किए जाए, हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम जो है ना वो अपने तौर पर कोई नाजायज काम करना शुरू कर दें, कोई गलत काम करना शुरू कर दें, या किसी को आजमाने के लिए या किसी कोई और जो है वो फायदा हासिल करने के लिए गलत रास्ते अख्तियार करना शुरू कर दें, ठीक है, ये समझते हुए कि भाई मुझे भी अल्लाह ताला का हुक्म आ रहा है, राइट, और मुझे भी जो है ना वो ऊपर से हुक्म मिल रहा है और मुझे फलाना मिल रहा है और ढिमकाना मिल रहा है, जैसे कि जब दिमाग उलट जाता है तो फिर इस किस्म की इंसान बातें करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ऊपर से हुक्म मिल रहा है नाजायज काम करने का, ठीक है, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते? इस वजह से कि हम नबी नहीं है, ठीक है, हम नबी नहीं है। इसलिए हमारे और अल्लाह के दरमियान जो है ना, वो जिस जिस तरह हमारे और अल्लाह के दरमियान फरिश्ते की पॉसिबिलिटी है कि फरिश्ता जो है वो इंट्यूशन हमारे दिल के अंदर डाल रहा है अल्लाह ताला से लेकर के, उतनी ही जो है ना वो शैतान की भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे दिल में जो ये ख्यालात आ रहे हैं ना कि फलाने को ऐसे करो फलाने को ऐसे करो, ये एक्चुअली आ तो अल्लाह की तरफ से रहे हैं लेकिन थ्रू वाया शैतान, ठीक है ना, वाया शैतान ये ख्यालात आ रहे हैं। तो अगर शैतान की तरफ से ख्यालात आ रहे हैं और मैं उन ख्यालात के ऊपर अमल करके जो है ना वो गलत काम करूंगा ना, तो मैं खुद मेरी अपनी गर्दन जो है वो मारी जाएगी। मुझे इस किस्म के कोई इजाजत नहीं है कि मैं जो है ना वो अल्लाह की तरफ मंसूब करके कोई गलत काम करना शुरू कर दूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा मामला नहीं था, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी थे और नबियों के और अल्लाह के दरमियान जो है ना वो शैतान हायल नहीं हो सकता है। ठीक है, बहरहाल तो ये भी डिस्कशन पहले काफी हो चुकी हैं। आगे अहकाम व मसाइल, फिर सूरह यूसुफ के अंदर हम बार बार देख रहे हैं कि अनलाइक अदर सूरत, दूसरी सूरतें भी हमने बहुत सारी माशाल्लाह इस क्लास के अंदर पढ़ी हुई हैं, लेकिन वहां पर इतने अहकाम व मसाइल इस तरीके से नहीं होते थे कि भाई इस आयत से ये अहकाम, इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स। लेकिन सूरह यूसुफ जो है ना उसके अंदर खास हम ये नोट कर रहे हैं कि अहकाम व मसाइल जो है ना वो अलग से जो है वो खूब सारे बयान किए जाते हैं, ठीक है, और जगहों पर भी थे लेकिन यहाँ को ज्यादा ही। तो उसकी बात रेलेवेंस जो है वो यही समझ में आती है कि सूरह यूसुफ का जो वाकया है ये डायरेक्ट हमारे ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना, यानी दीनदार मुसलमानों के, दीनदार मुसलमान, ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की तस्वीर तफसीर जो है वो पढ़ने के लिए क्लास में लॉग इन हुए हुए हैं और सुन रहे होंगे, देख के सुन ही रहे होंगे सारे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम दुनियादार मुसलमानों की कैटेगरी के अंदर तो फिट नहीं होते हैं, हम दीनदार मुसलमानों की कैटेगरी के अंदर फिट होते हैं, ठीक है। तो ये जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, ये भी दीनदार मुसलमान ही थे, ये भी दीनदार मुसलमान है, ठीक है ना, जिस तरह से कि हम तो बाकी बहुत सारे वाकयात हैं उनके अंदर जो है वो दीनदार मुसलमानों का इतना तस्करा नहीं मिलता। हाँ, सूरह हुजरात के अंदर जैसे सहाबा कराम को जो नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी जगहों पर मुखातिब किया, अदब सिखाया और दूसरी बातें, ऐसी जगहों पर तो ठीक है वो दीनदार मुसलमान होते हैं और वहां पे उनका कोई ऐसा यानी गुनाह कबीरा का मामला भी नहीं होता। सहाबा कराम को जब अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है ना, तो वो भी दीनदार मुसलमान ही, जैसे ये लोग दीनदार मुसलमान है। लेकिन इन दीनदार मुसलमानों में और सहाबा कराम के दरमियान फर्क किया है कि ये गुनाह कबीरा कर चुके थे और उसके ऊपर परसिस्टेंटली जो है ना वो कायम थे अपने गुनाह कबीरा के ऊपर, ठीक है, जबकि सहाबा कराम जो है ना उनसे कोई भूल चूक गलती अगर हो भी जाती थी तो वो जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के माफी मांग लिया करते थे, तौबा कर लिया करते थे, इकरार कर लिया करते थे, ठीक है, और जो है ना वो मामला जो है वो ठीक ठाक हो जाता था। अलबत्ता अल्लाह ताला ने उन कुछ कुछ ऐसे वाकयात का तذکرہ जो है कुरान मजीद में कर दिया बाकी उम्मत के लिए, ठीक है ना, बाकी उम्मत के औलिया कराम के लिए कि भाई ये ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम भी जो है ना वो तौबा कर लेना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये भी सहाबा ही थे, उनके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद भी थे और सहाबी भी थे याकूब अलैहिस्सलाम के, लेकिन इनका मामला जो है ना वो हमारे मामले जैसा है, यानी 21st सेंचुरी के पाकिस्तानी इंडियन मुसलमानों जैसे हैं। वैसे तो अरब में भी कोई फर्क नहीं है लेकिन इस दौर के मुसलमानों जैसा मामला, कि गुनाह भी चल रहे हैं, गुनाह कबीरा भी चल रहे हैं और जो है ना वो अल्लाह अल्लाह भी चल रही है साथ साथ, ठीक है। तो अहकाम व मसाइल फिर इस वजह से हमारे मशायख इस बात को समझते हुए जो है ना वो हमारे लिए स्पेल आउट करते हैं फिर अहकाम व मसाइल, और हमारे बड़ों ने यहाँ तक फरमाया कि सूरह यूसुफ जो है ना ये खास तौर पर नौजवानों को पढ़नी चाहिए, दीनदार मुसलमानों को जो है ना इब्तदाई बल्कि यहाँ से करनी चाहिए, ठीक है। तो अहमियत है ना, कोई खास बात है ना इस सूरह यूसुफ के अंदर, इसी वजह से सब कुछ कहते हैं। तो बहरहाल फरमाते हैं वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना से साबित हुआ, कि जो इन लोगों ने कहा ना कि हम तो उसी चीज की शहादत देते हैं जिसका कि हमें इल्म है, उसके अलावा तो हम किसी चीज की शहादत नहीं दे रहे। तो इससे साबित हुआ कि इंसान जब किसी से कोई मुआमला और मुआहदा करता है तो वो जाहिरी हालात ही पर महमूल होता है, ठीक है, जाहिरी हालात पर ही आप उसको डिपेंड करके या उसको जो है ना वो रखते हैं। ऐसी चीजों पर हावी नहीं होता जो किसी के इल्म में नहीं। तो बरादरान यूसुफ ने वालिद साहब से जो भाई की हिफाजत का वादा किया था वो अपने इख्तियारी उम्र के मुतालिक था, और ये मामला कि उन पर चोरी का इल्जाम आ गया और उसमें पकड़े गए, इससे मुआहदे पर कुछ असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो पीछे हमने काफी पीछे बल्कि रमजान मुबारक में याद पड़ता है कि जब इस टॉपिक पर बात करी थी तो आपको कहा था साजिद ने, यानी आप में अक्सर जो है वो जानते भी होंगे प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखते हैं और साइन करते हैं तो उसके अंदर एक क्लॉज जो है ना वो होता है कि भी फोर्स मेजोर इसको कहते हैं कि भाई अगर जो है ना वो जंग हो गई तो हम जो है ना अपना डिलीवरी नहीं कर सकेंगे, हम जो है वो अपना टारगेट्स मीट नहीं कर सकेंगे, अगर जलजला आ गया तो हम अपना टारगेट्स मीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो भाई हमें क्या पता जलजला आने वाला है कि नहीं आने वाला है, जंग होने वाली है कि नहीं होने वाली है। हाँ, ये और बात है कि जंग जो है वो बिल्कुल होने वाली है और आप जो है ना खास करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें और जब जंग हो तो फिर जंग का बहाना करते हुए भाग जाए पैसे लेकर के, ठीक है ना। तो ये तो एक अलग बात है ना, लेकिन वरना जंग होना या जलजला आ जाना या सुनामी का आ जाना ये किसी को पता तो नहीं होता पहले से। एनीवे, दूसरा मसला तफसीर कुर्तुबी में इस आयत से निकाला गया है कि इस जुमले से साबित हुआ कि शहादत का मदार इल्म पर है। यानी आप जब किसी चीज के ऊपर गवाही देते हैं किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी मुकदमे में, जैसे आपने शहादत की गवाही दी, तो वो इसका दारोमदार जो है ना वो आपके इल्म के ऊपर है जो आपको पता है। इल्म हुआ किसी तरीके से भी हासिल हुआ, इसके मुताबिक शहादत दी जा सकती है। इसलिए किसी वाकये की शहादत जिस तरह उसको बचश्मे खुद देख कर दी जा सकती है, अपनी चश्म से अपनी आंखों से देख करके जिस तरह आप किसी वाकये की शहादत दे सकते हैं, इसी तरह किसी मोतबर फिकह से यानी किसी ट्रस्ट वर्दी इंसान, ठीक है ना, किसी सच्चे अमानतदार इंसान से सुन करके भी शहादत दी जा सकती है। शर्त यह है कि असल मामले को छुपाए नहीं बयान कर दे कि वाकया मैंने खुद नहीं देखा था, फुला सिका आदमी से मैंने सुना है। इस उसूल की बिना पर फुकहाए मालिकिया ने नाबीना की शहादत को भी जायज करार दिया है। ठीक है ना, यानी नाबीना ने कोई थोड़ी देखा कि भाई एक्सीडेंट हुआ था और किसने किसको मारा था, लेकिन नाबीना ने किसी सच्चे से सुना और उसने जो है ना फिर गवाही दे दी कि भाई मैं इस बुनियाद पे गवाही देता हूँ कि मुझे किसी सच्चे इंसान ने देख करके बताया था। ठीक है ना, तो उसकी शहादत को भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कबूल करते हैं, अगरचे के दूसरे फुकहा इस जुमले से ऐसा लगता है कि दूसरे फुकहा में ऐसी कबूलियत नहीं है, नाबीना की कबूलियत नहीं है, लेकिन इमाम मालिक के नजदीक इवन नाबीना की भी बात मान ली जाएगी। ठीक है, तो यही जो है वो सबसे बड़ा वाकया हमारे यानी नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने मेराज के वाकये के ऊपर जो शहादत दी तो वो देख करके नहीं दी किसी भी चीज को, बल्कि चूंकि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तो मैं गवाही दूं। और इसी तरीके से और भी मौकों के ऊपर है ना, वो जो घोड़े वाला वाकया भी हमारे हजरत अक्सर बयान में बताते हैं कि वो क्या था मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही था ना कि हाँ एक सहाबी ने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के कॉल के ऊपर गवाही दे दी थी कि हाँ ये सच है, मैं गवाही देता हूँ कि ये बात सच है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम बात से खुश और फरमाए कि आज से इनकी गवाही जो है ना वो दो आदमियों की गवाही के बराबर है। ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा मौका दे दिया, ऐसी तौफीक अता फरमा दी कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ बात को सुन करके शहादत दी कि हाँ मैंने देखा है इस मामले को, या मैं इसकी शहादत देता हूँ। ठीक है, तो सिका जो है वो ज़ाहिर नबी जो होता है वो सिका होते हैं, और जो जो वली होते हैं वो भी सिका होते हैं, और कोई आम आदमी भी जो सालिहीन में से होते हुए भी सिका कहलाता है क्योंकि सच बोलने वाला इंसान होता है। मसला, आयात मस्कूरा से ये भी साबित हुआ कि कोई शख्स हक और रास्ते पर है मगर मौका ऐसा देखने का है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक और मसला बयान फरमाया कि आयात मस्कूरा से ये भी साबित हुआ कि अगर कोई शख्स हक और रास्ते पर है, यानी सीधे रास्ते पर है, रास्ते का मतलब सीधा रास्ता, मगर मौका ऐसा है कि देखने वालों को ना हक या गुनाह का शुबा हो सकता है, यानी वो खुद तो कोई गलत काम नहीं कर रहा लेकिन देखने वालों को शुबा हो सकता है कि ये गलत काम कर रहा है, नाहक काम कर रहा है, यानी जो काम हक के खिलाफ है, बातिल है, ऐसा काम कर रहा है, शुबा हो सकता है देखने वालों को, तो उसको चाहिए कि इस इश्तबाह को, इस शुबे के मौके को दूर कर दे। हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला को वाकया था, दो गवाहियों वाला, दो 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 मर्दों की गवाही के बराबर। तो फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि इस इश्तबाह को दूर कर दे ताकि देखने वाले बदगुमानी के गुनाह में मुबतला ना हो। जैसे इस वाकये बुनियामीन में पिछले वाकये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बिना पर मौका तोहमत और शुबों का पैदा हो गया था, इसलिए उसकी सफाई के लिए अहले बस्ती की गवाही और काफले वालों की गवाही पेश की गई थी। ठीक है, तो शुबा पैदा हो गया था कि भाई हाँ, ये दोबारा जो है ना, ये उसी किस्म की कोई कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने गवाहियां पेश करी कि भाई ये शुबा दूर हो जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में गिल्टी कॉन्शियस वाला वाला एस्पेक्ट तो डेफिनेटली था ही, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो है ना, वो ये जो भाई थे, ये कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, पहले किया था गलत काम, अब जो है ये गलत काम नहीं कर रहे थे, सिवाय इसके कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बात कर दी थी उन्होंने कि जैसे बुनियामीन ने चोरी करी ना, उसी तरह इसके भाई ने भी पहले चोरी कर दी, वो तो इनसे गुस्से में हो गया, लेकिन बाकी चीजें जो है ना, ये बाय द बुक ही कर रहे थे। ठीक है, तो इस टॉपिक पर भी याद पड़ता है कि रमजान मुबारक के लेक्चर्स के अंदर काफी बात हो चुकी थी कि हम जो है ना, वो शुबा, लोगों के दिलों में शुबा पैदा करने के मौके से खुद भी बचें, बचना चाहिए हर एक को, और क्लेरिफाई कर देना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में हमारे बारे में डाउट्स पैदा ना हो। लेकिन इसकी भी लिमिट्स होती हैं कि आप हर बंदे को परसू नहीं कर सकते, हर सिचुएशन को जो है ना, वो इस तरह से नहीं कर सकते कि जी टू मेक श्योर जो है वो किसी के दिल में कोई खराबी पैदा ना हो, क्योंकि एक तो ये कि आपके कंट्रोल में हर चीज होती नहीं है, और खुद इंसान जो है वो इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं रह सकता हर वक्त कि कोई उसके अमल को कैसे परसीव कर रहा है, कोई उसके अमल को कैसे देख रहा है, और कोई क्या सोचेगा, और क्या कोई सोचेगा, यानी अगर आप हर वक्त यही सोचते रहें कि कोई क्या सोचेगा, तो फिर दैट्स ऑल दैट यू विल बी डूइंग, इसके अलावा आप और कोई काम कर ही नहीं सकेंगे, और आपका दिमाग जो है ना, बस इसी के अंदर हर वक्त लगा रहेगा, तो ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आमतौर पर आपकी एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारी है, लोग जो है वो अच्छा ओपिनियन रखते हैं आपके बारे में। अब कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फेल हो गया आपसे कि जिसकी बुनियाद पर शक पैदा हो सकता है, तो उसमें आप लोगों को क्लेरिफाई कर दें। फिर इस बात को करते हुए इस आजिज ने आपके सामने एक और भी इससे एक टेंजेंट मसला बयान किया था, वो अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा कि आपकी भी कुछ पार्टिसिपेशन हो जाए इसके अंदर, इस वाले मसले से कि अपने ऊपर आने वाले शुबहात को क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे जो है वो एक 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 और भी बात हुई थी इससे निकलती हुई, जिसको टेंजेंट होता है, टेंजेंट में जाते हुए इससे एक और बात निकली थी, वो अगर किसी को याद है तो बताएं, जब तक इनका ये जो एक मैसेज आया हुआ है वो मैं देखता हूँ कि हाउ टू ट्रीट कंट्रोल्ड एंगर। माशाल्लाह, तो आप कंट्रोल्ड एंगर के बारे में बात कर रहे, हाउ टू ट्रीट कंट्रोल्ड एंगर। तो अब आपसे अगर हम ये सवाल करें कि आपको माशाल्लाह इतना याद है कि जी कंट्रोल्ड एंगर कोई चीज होती है, तो ये भी बता दें कि भाई कंट्रोल्ड एंगर होती क्या है, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको बात पूरी तरह याद है कि नहीं याद है, इसके बारे में आप सवाल करें। हाउ टू ट्रीट, यानी आपका तो सवाल है ना हाउ टू ट्रीट, लेकिन डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज कंट्रोल्ड एंगर टू बिगिन विद? कंट्रोल्ड एंगर था क्या? किसी ने क्या लिखा, किसी ने और ने डायरेक्ट मैसेज में लिखा है कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की ही परवाह रहेगी, अल्लाह का ध्यान नहीं रहेगा। हाँ, जाहिर है जब आप मुस्तकिल यही सोचते रहेंगे कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो फिर आपका ध्यान हर वक्त मखलूक की तरफ लगा रहेगा, हर वक्त लोगों की तरफ लगा रहेगा, और आपका अल्लाह की तरफ से तो बिल्कुल ही ध्यान मिट जाएगा, और जाहिर पर आप किसी काम के नहीं रहेंगे, इवन दुनियावी एतबार से भी आप कुछ कर नहीं सकेंगे, और दीनी एतबार से तो आप बिल्कुल ही गए गुजरे हो जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह की तरफ से ध्यान खत्म हो गया तो फिर दीन में क्या बाकी रह गया उसके बाद। तो हाँ, इन्होंने क्या लिखा, हमें उन शुबहात को क्लियर करना होगा अवामुन नास के जहनों से, फॉर व्हाट, फॉर हुम, अपने बड़ों की ऐसी बातें जिनका गलत मतलब निकल सकता है उसकी एक्सप्लेनेशन देना। जी जजाकुमुल्लाह खान माशाल्लाह। ठीक है, यही बात साजिश ने करी थी जो टेंडेंट के तौर पे इस पॉइंट से निकली थी, वो ये थी कि जब कोई बड़े हो जाते हैं ना, यानी अकाबिर हो जाते हैं, सीनियर्स हो जाते हैं, बड़े उलमाए कराम, बड़े जो है वो मशायख उजाम, ठीक है, तो वो छोटी छोटी बातों में, जैसे सामने कोई मामला हो गया तो उसमें तो चलो वो अगले बंदे को बोल सकते हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो मामला हुआ था ना कि अपनी एक जौजा मुहतरमा के साथ रात के वक्त जो है वो जा रहे थे और सामने से दो सहाबा गुजर रहे थे, तो आप ने जोर से आवाज देकर कह दिया कि भाई ये तो मेरी बेगम है, ठीक है ना, मैं किसी गैर औरत के साथ नहीं जा रहा, मेरी अपनी बीवी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो चलो हो सकता है, लेकिन स्पेशली वेन इट कम्स टू मीडिया, वेन द मीडिया गेट्स इन्वॉल्व, ठीक है ना, जब मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है ना किसी की कवरेज में, जैसे हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम, मुफ्ती तकी उस्मानी, मीडिया फोकस है ना, मीडिया की लाइम लाइट जो है ना वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर पड़ चुकी है, और पूरी दुनिया के मीडिया की पड़ चुकी है बल्कि उनके ऊपर, है ना। उसी तरह हमारे हजरत भी माशाल्लाह वो भी मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त हर बंदा उनको, वैसे तो अलहमदुल्ला दूसरे मीडिया पे तो नहीं आते लेकिन सोशल मीडिया पे तो आखिर मीडिया ही है ना, तो उसकी भी कवरेज है, और तारिक जमील साहब है ना, उन्होंने पूरा मीडिया स्कॉलर, मतलब नाउज बिल्ला मीडिया स्कॉल उस तरह के वाले नहीं बल्कि मीडिया कवरेज उनकी होती है हर चीज की। ठीक है, तो अब जो ऐसे लोग हो जाते हैं ना तो उनके उनको फिर लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, और वो फिर ना हर बंदा जो है वो अपने जर्फ के मुताबिक जो है ना वो उनकी बातों को समझ रहा होता है, परसीव कर रहा होता है, और उल्टे उल्टे जो है मतलब भी निकाल रहा होता है। तो अब ये उनके लिए हर ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो है ना वो हर बंदे को एक्सप्लेनेशन पेश करते रहे, हर बंदे की जो है गलतफहमी को जो है वो दूर करते रहे, मुमकिन ही नहीं है ये उनके लिए। ठीक है, तो अब ये किसका काम है, ये उनके छोटों का काम है, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स का काम है, उनके मुरीदों का काम है, उनके सालिकीन का काम है कि वो अपने बड़ों के बारे में जो गलत फहमियां फैल रही हैं उनको जो है वो क्लियर करें, जैसे भी क्लियर करें लेकिन करें, ठीक है ना। अब उसके लिए कोई भी तरीका इख्तियार करें, या तो सही बात को बार बार लोगों के सामने क्लियर करें, समझाएं, ताकि लोग जो है ना वो सही गलत की तमीज सीख सकें, बेशक उनका नाम ना लें लेकिन सही कॉन्सेप्ट को जो है वो लोगों के सामने बार बार अच्छे अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करते रहें, या गलत कॉन्सेप्ट की जो जो गलत बातें हैं उनकी गलती को जो है वो बार बार लोगों के सामने बयान करते रहें, ठीक है, यानी उसूली तरह से इस तरह से बात करते रहें ताकि लोगों का जहन जो है ना वो गलत और सही के बारे में क्लियर हो जाए, होपिंग कि वो फिर उसको अप्लाई भी कर सकेंगे कि हाँ भाई फलाने बुजुर्ग के बारे में हमने जो गलत बात सोची हुई है ना वो हमें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे नहीं होता, दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। तो ये अब छोटों का काम होता है, वो किसी भी तरीके से इस बात को क्लियर करें, बड़े ये काम नहीं कर सकते हैं, स्पेशली मीडिया के तौर पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहरहाल, तो नबी अलैहिस्सलाम का वाकया बल्कि सॉरी यहाँ पे मौजूद ही था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से भी इसकी ताकीद फरमाई है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के साथ मस्जिद से एक कूचे में तशरीफ ले जा रहे थे, तो उस कूचे के सिरे पर दो शख्स नजर पड़े, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर ही से फरमा दिया कि मेरे साथ सफिया बिनते हुयई। इन दो हजरात ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके बारे में किसी को बदगुमानी हो सकती है, यानी हमें आपके बारे में कैसे बदगुमानी हो सकती है, तो फरमाया कि हाँ, शैतान इंसान की रग रग में सिरायत करता है, हो सकता है कि किसी के दिल में शुभो डाल दे। ठीक है, रग रग में सिरायत करता है, फिजिकली सिरायत करता हो या वर्चुअली सिरायत करता हो, लेकिन मतलब इसका यह है कि शैतान मुस्तकिल इंसान के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये जो मुस्तकिल लगा हुआ आता है हर बंदे के साथ एक शैतान, वो कौन सा वाला शैतान, सूरह नास के अंदर जिसका जिक्र है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर नास मिनल जिन्नति वन नास, ठीक है ना, सॉरी मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उसका नाम है खन्नास, ठीक है, हमारे उर्दू जुबान के अंदर वो मुहावरा भी बन गया खन्नास, ये तो बड़ा खन्नास किस्म का इंसान है, ठीक है, तो वो मुस्तकिल जो है ना वो वसवसे डालता रहता है, तो गोया के वो रग रग में सिरायत करा हुआ है, तो वो शुभ डालता रहता है, बड़ों के बारे में शुभ डालता रहता है, या किसी बुराई की तरफ, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, कर लो सभी करते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो ये तो हो गई ये वाली आयत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल, अब आगे की भी शुरू कर लेते हैं, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, काला बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा फसबरुन जमील अस्सल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीअ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। उसने कहा, यानी किसने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अब जो है ना पूरा ड्रामा इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, इनके याकूब अलैहिस्सलाम के सामने ये लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है, तो उन्होंने अपना केस बयान कर दिया। अब याकूब अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, तो फरमाया बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा, कि तुम्हारे नफ्सों ने जो है ना वो तुम्हारे लिए एक एक मामला बना दिया है, ठीक है ना, एक बात बना दी है। तो ये जो सवलत का लफ्ज है, ये सूरह यूसुफ के अंदर और भी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब जो होता है ना, यानी किसी को ना किसी बुरे काम के ऊपर जो है ना वो माइल करना, बुरे काम की तरफ माइल करना, उसको जो है ना, जैसे सिडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तो सिडक्शन का लफ्ज जो है वो नेकी के काम की तरफ सिड्यूस नहीं करता कोई, ठीक है, बल्कि गंदे काम की तरफ सिड्यूस किया जाता है, या इंटाइस का लफ्ज भी अंग्रेजी के अंदर इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सब वाला युसव्विलु तस्वीलन फहुवा मुसव्विलुन, तो वो उसी से ये सवलत का जो सीधा बना, तो तुम्हारे नफ्सों ने जो है ना वो तुम्हारे लिए एक ऐसा एक मामला बना दिया जो कि तुम्हारे एकदम गलत काम की तरफ जो है ना वो माइल कर रहा है। फसब्रुन जमील, बस मैं तो यानी सबर ही करूंगा, और जमील सबर यानी बहुत ही एक खूबसूरत सबर करूंगा, या ये कि सबर ही जमील चीज है, सबर ही जमील चीज है। अगर खाली जो है वो इन दो लफ्जों को ही ट्रांसलेट कर लिया जाए तो सबर ही जमील, सबर ही अच्छा है, ठीक है। असल्लाहु, शायद कि अल्लाह ताला, अई या अतियानी बिहिम जमीआ, कि मेरे पास इन सब को ले आए, ठीक है ना, शायद कि अल्लाह ताला मेरे पास इन सब को ले आए, मेरे पास पहुंचा दे। इन्नहु हुवल अलीम अल हकीम, बेशक वो अल अलीम भी है, हर चीज का जानने वाला है, और अल हकीम भी है, और सारे काम हिकमत से करने वाला भी है, ठीक है ना। हर चीज का इल्म हो जाना, यानी बहुत सारी चीजों का इल्म हो जाना जरूरी नहीं है कि इसका मतलब यह है कि अब चीजें बड़े अच्छे से और हिकमत के साथ भी हो रही हो, बस आपको नॉलेज है, आपके पास जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इंफॉर्मेशन है बे इंतहा, जैसे कि कंप्यूटर के पास, राइट, यानी आप फीड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ठीक है ना, या वो जो है खुद ही जो है वो, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद ही जो है वो लर्न करती जाए करती जाए, मशीन लर्निंग जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो अब मशीन लर्निंग से उसके पास जो है वो सब कुछ आ गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि सारी इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है, नाउज बिल्ला गोया के अलीम के करीब करीब कोई चीज बन गई, वो अब वो हकीम भी बन जाएगी, अलीम होने की वजह से हकीम भी बन जाएगी, नहीं, हकीम एक अलग चीज होती है, हिकमत एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां पे अपने इल्म का तज़किरा फरमाते हैं, इल्म वाली सिफत का, वहीं पे हकीम वाली सिफत को भी जो है ना वो री इन्फोर्स करते हैं कि मैं खाली इल्म वाला नहीं हूँ तुम्हारे कंप्यूटरों की तरह से, बल्कि मैं हिकमत वाला भी हूँ, और मेरे हुक्म जो है ना असल में वो खवातीन में जो है वो सूरह बनी इसराइल की जो आयात चल रही है वो एग्जैक्टली यही है, ठीक है, कि जो अल्लाह ताला के हुक्म है ना वही हिकमत है। ज़ालिका मिम्मा अवहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ठीक है, अल्लाह ताला के जो अहकाम सूरह बनी इसराइल में बयान है यही हिकमत में से है। अच्छा, तो इन्नहु अल अलीमुल हकीम। अच्छा, यहाँ पे जिन साहब ने सवाल किया था हाउ टू ट्रीट कंट्रोल्ड एंगर, तो उनसे पूछा था कंट्रोल्ड एंगर होता क्या है, तो आप तो मेरा सवाल ही नहीं समझे, एक्सप्रेसिंग एंगर इन कंट्रोल्ड सिचुएशंस, चले आप रहने दें, आप कंट्रोल्ड एंगर जो आपको बयान किया था ना, अगर आप क्लास की बात ही के ऊपर आप जो है वो सवाल कर रहे हैं, तो आपको ये बताया था इस वक्त बेतदबीर ने कि जो लोग कंट्रोल्ड एंगर शो करते हैं ना, यानी किसी के पास किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हो रहे हैं, अभी गुस्सा हो रहे हैं, 2 मिनट के बाद गुस्सा नहीं हो रहे हैं, तो ये एंगर की रूहानी बीमारी नहीं होती है, बल्कि कौन सी वाली रूहानी बीमारी होती है, ये पूछा था अभी मैंने आपसे, कौन सी वाली रूहानी बीमारी होती है जिसको कि आप पूछ रहे हैं कि हाउ टू ट्रीट इट, ठीक है, तो वो जो होती है तकब्बुर वाली रूहानी बीमारी होती है। कंट्रोल्ड एंगर जब होता है ना किसी के अंदर, वो तकब्बुर की वजह से होता है, तो योर क्वेश्चन शुड हैव बीन, आपका सवाल ये होना चाहिए था हाउ टू ट्रीट तकब्बुर, ठीक है ना, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन को जो है वो आपने सवाल कर लिया, लेकिन जो असल टर्म थी जिससे कि बात ज्यादा समझ में आती है वो आपने बयान नहीं करी। तो तकब्बुर, ठीक है ना, ये तकब्बुर जिसके अंदर होता है ना, दैट रिजल्ट्स इन कंट्रोल्ड एंगर, ठीक है। तो उसका इलाज जो है ना, वो तकब्बुर का इलाज आप बशायर, अब क्लास में तो खैर टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा था लेकिन आपने सवाल कर लिया है, तो ये एक बड़ा तफसीली टॉपिक है। माशाल्लाह हमारे मशायख ने इसके ऊपर तो खूब समझाया है, खूब इसके ऊपर जो है ना वो यानी नसीहतें करी हैं, तरीके समझाए हैं। तो जरा सा थोड़ी सी तकलीफ करके तकब्बुर के ऊपर जो हमारे मशायख के बयान होते हैं ना, उनको जरा देख लें, ठीक है ना। अभी इतने टाइम में तो आपको ये कह सकते हैं, ठीक है, तकब्बुर का कैसे इलाज करना है, दुआ से शुरू करें चले। अभी इतना बता देते हैं, दुआ से अल्लाह मेरे तकब्बुर को खत्म करते हैं, अल्लाहुम्मा जालनी फी आईनी सगीरा, ठीक है ना, अल्लाह मुझे मेरी आंखों के अंदर छोटा बना दे, अल्लाहुम्मा जालनी फी आईनी सगीरा, ठीक है ना, इस दुआ से शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद फरमाएंगे। तो फरमाते हैं वतवल्ला अनहुम, और उल्टा फिरा उनके पास से, यानी याकूब अलैहिस्सलाम अब जो है ना वो उनके पास से जो है ना उन्होंने यानी पीठ फेर ली तरफ, अपने बेटों की तरफ। वकाला, और उन्होंने कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, या असफा अला यूसुफ, ए अफसोस यूसुफ के ऊपर, ठीक है। या असफा जो है वो अरबी का एक कॉन्स्ट्रक्ट, एक मुहावरा है कि ए अफसोस, हाय हाय, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, या असफा अला यूसुफ, ए अफसोस यूसुफ के ऊपर, और उसकी जो आंखें थी यानी याकूब अलैहिस्सलाम की जो आईन, अभी अभी दुआ में भी है ना, वजअलनी फी अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा, तो आईन जो है वो आंख को कहते हैं, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो है ना वो आईनाहू, तो उसकी जो आंख आंखें थी ना, तो वबयद्दत, वो सफेद हो गई, ठीक है ना। ये एक टर्म है, मतलब एक आंखें सफेद होंगी, यानी उनका जो बीच में जो वो नजर आता है ना, ब्लैक ब्लैक जो क्या कहते हैं उसको, रेटना जो कहते हैं, तो वो जो है ना वो यानी उसकी 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 कालापन जो है ना वो, जब कोई ऐसे अंधा हो जाता है तो वो अजीब सा ना उसका रंग हो जाता है, सफेदी सफेदी मायल हो जाता है। तो इनकी आंखें जो है ना वो सफेद हो गई, मिनल हुजन, हुजन से, हुजन क्या चीज होती है, अंदर का गम, गम उसको कहते हैं उर्दू के अंदर, वह हुआ कजीम, और वो जो है ना वो यानी पी रहे थे अपने गम को, जो है ना फिर इंसान अंदर ही अंदर घुलता रहता है, उर्दू में कहते हैं, तो उसी तरीके से अरबी जुबान के अंदर अपने गम को जो है ना वो पी रहे थे, ठीक है, अंदर ही अंदर, तो कजीम, हाँ यानी काजिम, कजीम कजीम जो है उसका मुबालगे का सीगा है काजिम का, तो वो आपको घोट रहा था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम को जो है ना वो अंदर ही अंदर घोट रहा था, यानी याकूब अलैहिस्सलाम। कालू, बेटे उसके ऊपर कहने लगे, तल्लाही, अल्लाह की कसम, तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफा, के आप तो यूसुफ के तज़किरे को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, यू आर नॉट एबल टू गेट ओवर इट, गेट ओवर इट, है ना, छोड़ो बस खत्म करो, इतना अरसा गुजर गया, इतने साल गुजर गए, ठीक है, लेकिन आप ही जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ के दे रहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के तस्करे का, तफ्तऊ, ठीक है, तो अजीब ये लफ्ज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तफ्तऊ, फता, फता कहते हैं नौजवान को, ठीक है, जैसे वो यूसुफ सॉरी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो यूशा अलैहिस्सलाम थे ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम के नौजवान थे, उनके साथ चल रहे थे खादिम के तौर पर, ठीक है, तो फता जो है वो नौजवान से कहते हैं, यंग आदमी, ठीक है, और उसका जो है वो यहाँ पर जो सीगा फेल के सीगे में जब ये इस्तेमाल हुआ ना, तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफ का, तो वो आप नहीं छोड़ेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद को, तो पता नहीं उसकी आपस में मैंने अभी इतनी कोई तहकीक नहीं करी है, लेकिन दिन में एक बात आ रही है कि नौजवान भी जो है ना जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो छोड़ते नहीं उस चीज को, ठीक है, तो शायद तफ्तऊ का लफ्ज भी जो है वो यहाँ पर यही मानी रखता हो, जिस तरह नौजवान भी नहीं, फता जो होता है वो भी नहीं, यंग ब्लड होता है ना, तो वो नहीं छोड़ता किसी चीज को। बहरहाल, तो आप भी यूसुफ के तस्करे को नहीं छोड़ेंगे, हत्ता तकुना हरबन, हत्ता के आप घुल जाए, हरब हरबन, ये सिफत का सीगा है, सिफत मुशब्बा और यानी घुला देने वाला गम, यानी आप घुल जाएंगे सबके अंदर। औ तकूना मिनल हालिकीन, या आप जो है ना वो अपने आप को हलाक कर देंगे सबके अंदर। हालिक, हलाक कर देने वाला, हलाक हो जाने वाला। काला इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, उन्होंने कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कि बेशक अश्कु बस्ती, मैं अपनी शिकायत जो है ना और अपना इज़्तिराब जो है ना, अपना गम जो है, ठीक है, और वह हुज़्न, हुज़्न जो है वो गम अभी अभी गुजरा, बस्ती अपना इज़्तिराब जो है ना वो अश्कु यानी वो बयान करता हूँ। यहाँ पे गोया के शिकायत का लफ्ज है, लेकिन शिकायत क्योंकि अल्लाह ताला से यहाँ पर हो रही है, तो अब ये और हैं भी नबी अलैहिस्सलाम, तो नबी अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से शिकायत करेंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना उसमें अल्लाह तूने ये क्यों किया जैसे कि हम शिकायत करते हैं, नहीं, बल्कि बयान करना, मैं अल्लाह ही से अपना गम बयान करूंगा, अपना इस्तराब बयान करूंगा, इल्लाह, अल्लाह ही से, वह आलमु मिन अल्लाह मा ला तअलम, और मैं अल्लाह के बारे में इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते, जो तुम नहीं जानते, ठीक है। अल्लाह को जानना, अल्लाह को पहचानना, ठीक है ना, इसके दर्जे होते हैं, कोई कम पहचानता है, कोई ज्यादा पहचानता है, कोई बिल्कुल भी नहीं पहचानता, ठीक है ना। नबी जो होते हैं वो अल्लाह के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं इंसानों में, ठीक है, वो फरमा दिया कि मैं अल्लाह ताला के बारे में ज्यादा जानता हूँ तुम लोगों के मुकाबले में। या बनी या, ए बेटो, इज़हबू, जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफा, बस तलाश करो, तहस्सस है, तहस्सस, तुम तलाश करो यूसुफ के बारे में, ठीक है ना, यूसुफ को तलाश करो, मिन का मतलब यहाँ पर को तलाश करो, वह अखी ही और उसके भाई को, यानी यूसुफ का जो सगा वाला भाई है ना दुनिया में, उसको तलाश करो जाकर के, वला तई असु मिन रूहिल्लाह। तो तलाश करो का लफ्ज वैसे यहाँ पर तो बयान है, लेकिन वो कोई गुम को थोड़ी हो गए थे, वो तो पता था कहाँ पर है, ठीक है, लेकिन उनका जो है ना, नहीं, उनका हिस हासिल करो कि ट्राई टू रीच हिम समहाउ, ठीक है, और खाली उसको नहीं बल्कि यूसुफ को भी, यूसुफ गुम हो गए थे, भाई तो गुम नहीं हुआ था, तो यूसुफ को और भाई को दोनों को जो है ना तलाश करो, वाला तय असुमिल्ला, और ना उम्मीद मत हो अल्लाह ताला के रहमत से, फैज से, इन्हो ला यही असू, ला यही असू मिन रूहिल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत से, फैज से जो है ना वो कोई ना उम्मीद नहीं होता, इल्ल काफिरून, सिवाय वो जो कि अल्लाह का इनकार करते हैं, ठीक है, यानी अल्लाह का इनकार करने का क्या मतलब, जो एथियस्ट हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो तो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह है ही नहीं, नहीं, ठीक है ना, नहीं, सिर्फ एथियस्ट अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते कि भाई वो तो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, तो कहाँ से अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखेंगे, नहीं, जो अल्लाह के हुक्मों का इनकार करता है, अल्लाह के नबी का इनकार करता है, वो भी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है, वो भी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। तो यहाँ पे इनकार सिर्फ अल्लाह की जात का इनकार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के नबी का इनकार, अल्लाह ताला के हुक्मों का इनकार, यानी गुनाह, ठीक है ना, तो वो भी मायूसी में मुब्तला कर दिया जाता है, ठीक है। क्लास देर से भी थोड़ी शुरू हुई थी और आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी ले लिया, माजरत के साथ। तर्जुमा अलहमदुल्ला कम से कम का मुकम्मल हो गया, अगली क्लास में फिर क्लास उसी से शुरू करेंगे। जज़ाकअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम अलैकुम।